नमस्कार भारत, तारीख 10 अक्टूबर दिन मंगलवार। मैं हूं आदर्श राठौर। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी अब तक की सबसे भयंकर आग, कम से कम 10 मौतें, 20,000 से ज्यादा घर छोड़ने को मजबूर। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नहीं थम रहा बच्चों की मौत का सिलसिला। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के रहते हुए क्या थे हालात, 30 साल बाद जाफना पहुंचे भारत के पूर्व सैन्य अधिकारी ने इस तरह से किया याद।
श्रीलंकन आर्मी और एयरफोर्स के जो लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने सोचा कि हम लोग जो है उनको पकड़ने के लिए और कैदी बनाने के लिए आए, तो उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और हाथ खड़े करके हमारे सामने आ गए।
होगी अखबारों की समीक्षा और खेल की खबरें भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार रजनीश कुमार से। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हुए हैं। कैलिफोर्निया का यह इलाका अंगूर के बागों के लिए मशहूर है। प्रशासन का कहना है कि तेज हवा के कारण आग को अब भी काबू में नहीं किया जा सका है। स्पेन से अलग कैटालोनिया को स्वतंत्र मुल्क बनाने को लेकर सरगर्मी हर दिन बढ़ती जा रही है। कैटालोनिया की राजधानी बार्सिलोना के मेयर अदा कोलाउ ने कैटलन अलगावादी नेता कार्लस पुजीमोंट और स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखोई से आग्रह किया है कि वे ऐसा कुछ भी ना करें जिससे संवाद और बीच बचाव की संभावना खत्म हो जाए। पुजीमोंट को फैसला करना है कि 8 दिन पहले आयोजित किए गए एक विवादित जनमत संग्रह के आधार पर कैटालोनिया को स्वतंत्र देश बनाने की घोषणा करनी है या नहीं।
Presidente Rajoy, como bien sabe, usted y yo tenemos muchas diferencias.
प्रधानमंत्री रखोई, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप में और मुझ में काफ़ी असहमतियां हैं, पर लोग अब और तनाव नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको गतिरोध खत्म करने में भूमिका निभानी चाहिए। आप स्पेनिश संविधान के अनुच्छेद 155 को वापस लीजिए और कैटालोनिया के संस्थानों में अपना हस्तक्षेप बंद कीजिए। इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से पुलिस की तैनाती को भी रद्द कीजिए। ये थे अदा कोलाउ के शब्द। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गूगल ने पता लगाया है कि रूसी एजेंटों ने पिछले साल अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में हजारों डॉलर विज्ञापन पर खर्च किए थे। गूगल जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि विज्ञापन का उद्देश्य गलत जानकारी फैलाना था। ऐसा करने के लिए यूट्यूब और जीमेल का भी सहारा लिया गया। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला ने चीनी लॉन्च सेंटर से अंतरिक्ष में एक दूसरा उपग्रह छोड़ा है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि इससे कृषि, पर्यावरण और आपराधिक गतिविधियों की निगरानी करने में मदद मिलेगी। यह उपग्रह वेनेजुएला के निष्क्रिय पड़े पहले उपग्रह की जगह लेगा। जब वेनेजुएला गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तब इस उपग्रह को छोड़ा गया है। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च अदालत में 7 सांसदों की दोहरी नागरिकता पर सुनवाई शुरू होने जा रही है। अदालत के इस फैसले पर इनका भविष्य टिका है। इन 7 सांसदों में उप प्रधानमंत्री बार्नबी जोयस भी शामिल हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि दोहरी नागरिकता के कारण उन्होंने शायद चुनाव में खड़ा होकर नियमों का उल्लंघन किया है। नाइजीरिया में चरमपंथी समूह बोको हराम के सदस्य होने के आरोप में अदालत में 800 लोग पेश हुए। नाइजीरिया के इतिहास में चरमपंथियों को लेकर अदालत में सबसे बड़ी सुनवाई शुरू हुई है। इसमें 7,000 लोग अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता और संदिग्धों के परिजनों ने बंद दरवाजे के भीतर सुनवाई की आलोचना की है। बोको हराम की हिंसा में उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। जिन्हें दोषी नहीं पाया जाता है उन्हें रिहा कर देना चाहिए और जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हम लोग इस मामले में पारदर्शिता पूर्ण कार्रवाई का समर्थन करते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यहाँ कई ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इसके साथ ही ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने अपराध किया है लेकिन खुले में घूम रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में भीषण आग लगने से कई जगह पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। बहुत बड़ा इलाका इस आग की चपेट में आया है, जिसकी वजह से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। इस आग को अमेरिका के इतिहास की सबसे भयंकर आग बताया जा रहा है। क्या है हालात, बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए मोहनलाल शर्मा से।
कैलिफोर्निया का वाइन बनाने के लिए मशहूर इलाका अभी भीषण आग की चपेट में है। आग लगने के बाद नापा, सोनोमा और यूबा से करीब 20,000 लोगों को हटाया गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर जेरी ब्रान ने अंगूर की खेती के लिए मशहूर इन 3 काउंटीज में आपातकाल की घोषणा की है। आग की लपटों से मौसम और गर्म हो गया है। लोग अपने जलते घरों को छोड़कर जान बचाकर भाग रहे हैं। इस इलाके में कई लोग लापता भी हैं। यूबा के एक निवासी ने इस खौफनाक मंजर को इस तरह से बयां किया।
That whole ridge over there was just glowing red and headed this way.
पूरे इलाके में आग की लाल और ऊंची लपटें दिख रही हैं। हवा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। आग में इतनी तेज हवा चलने का मतलब पता है? मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पड़ोस के घर जल गए हैं, पर मैंने खुद को बचा लिया किसी तरह। कैलिफोर्निया के वन विभाग और अग्नि सुरक्षा विभाग के प्रमुख किम पिमलोट ने कहा कि करीब 1,500 इमारतें अब तक नष्ट हो चुकी हैं। अभी तक ये नहीं पता चला है कि रविवार रात ये आग कैसी लगी। मेडिसिनो काउंटी में एक घाटी में हजारों एकड़ जमीन तबाह हो गई है। वन और अग्नि सुरक्षा विभाग के बटालियन प्रमुख जोनाथन कोकस ने कहा, जोनाथन कोकस कह रहे थे कि हमारा पूरा ध्यान लोगों की जान बचाने पर है। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। आग पर काबू पाने के लिए सारे उपकरण यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ से लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ से जल्दी निकल जाएं। अगर लोग अपने घरों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो छोड़कर निकल जाएं। ये आग तेजी से आगे बढ़ रही है। अग्नि सुरक्षा विभाग के बटालियन प्रमुख जोनाथन कोकस के शब्द। इस बीच खबरें हैं कि अंगूर के बागों में काम करने वाले दर्जनों लोगों को हेलीकॉप्टरों से निकाला गया है। तेज हवा, नमी की कमी और गर्म सूखे मौसम के चलते आग तेजी से फैल रही है। यहां पर राहत व बचाव का काम व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम विभाग ने सैन फ्रांसिस्को तक आग फैलने की चेतावनी दी है। आग के चलते कई सड़कें बंद हैं, जिससे लोगों को निकालने में काफी समस्या हो रही है। प्रशासन का कहना है कि जब तक हवा की गति कम नहीं हो जाती, तब तक आग पर काबू पाना आसान नहीं होगा।
अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में सबसे भयंकर अब तक की जो आग लगी है, उसमें अब तक 10 मौतें होने की खबर है।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड, यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की पहली सभा नमस्कार भारत। गोरखपुर एक बार फिर चर्चा में है। वजह एक बार फिर से वही, अस्पताल में बच्चों की मौत। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कल फिर 24 घंटों के अंदर 16 बच्चों की जान चली गई। हाल ही में यह अस्पताल बच्चों की मौत के चलते चर्चा में था। इतना कुछ होने के बावजूद आखिर बच्चों की मौत का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा, ये जानने के लिए कुलदीप मिश्र ने गोरखपुर में हमारे सहयोगी कुमार हर्ष से संपर्क साधा और पूछा कि इसकी वजह क्या है।
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस महीने के शुरुआती दिनों में अब तक 130 मौतें हो चुकी हैं। पहले दो दिनों में 29 बच्चों की मौत हुई, 3 अक्टूबर को 13, 4 अक्टूबर को 14, 5 अक्टूबर को 17, 6 अक्टूबर को 15 मासूमों की जान गई और पिछले 72 घंटों में 42 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। सभी को याद होगा कि अगस्त महीने की 10 तारीख को जब यहाँ पर 34 बच्चों की मौत हुई थी तो बहुत सारा हो हल्ला हुआ था और पूरे देश या सरकारों की निगाह में ये मामला आया था। मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य सहित 9 लोग जेल भी गए थे और अब प्रशासन उनके खिलाफ चार्जशीट की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं रुका है। अगस्त में 378 मौतें हुई थी और सितंबर में 433 मौतें हो चुकी हैं। और अगर अक्टूबर के शुरुआती 9 दिनों की बात करें तो 130 बच्चे अब तक यहाँ अपनी जान गंवा चुके।
अगर आपकी अस्पताल में डॉक्टरों से बात हो पाई हो तो मौत की वजह को लेकर क्या कोई जानकारी मिल पा रही?
लंबे समय से मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत को इंसेफ्लाइटिस से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन ऐसा लगातार देखने में आ रहा है और डॉक्टर्स बार बार इस चीज को रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों का सिलसिला थमा है। पहले के मुकाबले कम हुआ है। जो ज्यादा चिंताजनक बात है वो ये है कि जो नियोनेटल आईसीयू है, जो नवजात बच्चों के लिए बनाया गया आईसीयू है, उसमें मौतों की तादाद ज्यादा है। इस अंतर को ऐसे समझा जा सकता है कि जनवरी से अब तक इंसेफलाइटिस से यहाँ पर 310 लोगों की जान गई है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं, लेकिन 2000 से ज्यादा मासूमों की मौत नियोनेटल आईसीयू और पीडियाट्रिक आईसीयू में हो चुकी है। ये बहुत ही गंभीर बात है।
ये मामला पिछले दिनों चर्चित रहा, राष्ट्रीय स्तर की मीडिया वहां पहुंची, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और तमाम सचिव वहां पहुंचे। तो अस्पतालों में सुविधाओं के स्तर पर हालात संभवतः सुधरे हों, लेकिन फिर भी वो व्यावहारिक समस्या क्या आ रही है, क्यों ये मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा है?
असली खलनायक को पकड़ने की बात है। इंसेफ्लाइटिस के बारे में लगातार लिखा जाता रहा और इंसेफ्लाइटिस को ही सबसे बड़ा विलन बताया जाता रहा। जाहिर है कि इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ जंग बहुत प्रभावी तरीके से पिछले दिनों लड़ी गई है। मेडिकल कॉलेज में भी सुविधाएं बढ़ी हैं, अवेयरनेस बढ़ी है, और अभी जो हाल में 92 लाख बच्चों का जो टीकाकरण, एक मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला, लंबे समय से एक डिमांड चल रही थी कि इसको रेगुलर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में रख दिया जाए, जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको इंसेफ्लाइटिस प्रतिरोधी टीके लगाए जाए, ये सब कुछ हो रहा है। इन सारी वजह से इंसेफ्लाइटिस पर जरूर लगाम लगी है। पिछले साल अगर हम लोग देखें तो इंसेफ्लाइटिस से 514 बच्चों की मौत हुई थी, 2015 में 442 मौतें हुई थी, अभी 310 मौतें हुई हैं, और अब जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, जब ठंड बढ़ती है तो इसका प्रकोप कम होता चला जाता है। पर जो असली खलनायक है वो नवजात बच्चों को परेशान करने वाला संक्रमण, जो पानी की गड़बड़ी है, जो जॉन्डिस है, जो डायरिया है, और ज्यादा खेदजनक बात ये है कि इन से लड़ना शायद ज्यादा आसान था। सैनिटेशन के जरिए, प्रॉपर वाटर सप्लाई के जरिए ये सब सरकारें कर सकती थी, डॉक्टर्स का भी ये कहना है।
ये थे गोरखपुर से स्थानीय पत्रकार कुमार हर्ष। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह ने उन पर रिपोर्ट छापने वाली न्यूज वेबसाइट द वायर से जुड़े 7 लोगों पर कल मानहानि का केस दायर कर दिया। वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया था कि बीजेपी के सत्ता में आने के एक साल के अंदर जय शाह की कंपनी का टर्नओवर 16,000 गुना बढ़ गया। हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने द वायर के संस्थापक संपादकों में से एक सिद्धार्थ वरदराजन से बात करके उनकी प्रतिक्रिया जानी।
औपचारिक तौर पर कोई कागज वगैरह हमारे पास नहीं आए, सोशल मीडिया पे देखा है, कुछ डेफेमेशन केस के कुछ पन्ने लोगों ने स्कैन करके ऊपर डाला है, पोस्ट किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये एक हैरेसमेंट का केस है, या हम वायर को हैरेस कर रहे हैं, मीडिया और प्रेस फ्रीडम पे ये हमला है। और इस डेफेमेशन सूट, ये जो हैरेसमेंट का जरिया है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे।
क्या इस रिपोर्ट को छापते हुए आप इस जोखिम को समझ रहे थे, या ये आपके लिए एक चौंकाने वाली चीज की तरह आया कि मानहानि का मुकदमा करने वाले?
आंख हमारे खुले हुए थे जब हमने किया, क्योंकि उनके वकील से जो ईमेल आया था जहां पे उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया, उसमें तो साफ शब्दों में उसने कहा कि अब मैं जवाब दे चुका हूं, और अगर आप इसके बावजूद जय अमित शाह के खिलाफ स्टोरी लिखेंगे तो फिर मुकदमा आप पे लगेगा। मतलब ये एक न सिर्फ खतरा था, ये धमकी दी गई हमको, और इस धमकी को अच्छी तरह समझते हुए हमने ऑफिशियल रिकॉर्ड से जो डेटा हमने निकाला है, ये पब्लिक को इन चीजों के बारे में जानने का अधिकार है, और इसलिए हमने स्टोरी किया।
जो पीयूष गोयल ने आरोप लगाए कि मलिशियस है और अमित शाह की छवि खराब करने के मकसद से किया गया है, इसको आपकी प्राथमिक डिफेंस इस पर क्या है?
देखिए, पीयूष गोयल साहब मंत्री हैं, वो पहले तो ये बताएं कि मंत्री होते हुए एक निजी शख्स, क्योंकि जय अमित शाह के वकील ने कहा कि जय अमित शाह जी जो हैं ये प्राइवेट सिटीजन हैं, तो एक प्राइवेट सिटीजन के बचाव में कब से ये रिवाज बन गया कि भारत सरकार के मंत्री जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करेंगे, और जहां तक उनके इल्जामों की बात है, ये तो एकदम बेबुनियाद चीज है। मतलब कि ये तो सियासतदानों में, पॉलिटिशियंस में आमतौर पे ये टैक्टिक इख्तियार किया जाता है कि अगर कोई सवाल उठाए तो हमेशा ये कहते हैं कि भाई ये कोई एजेंडा है, आप आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी तो समझें कि जिस रिपोर्टर ने ये स्टोरी किया था, यही रिपोर्टर है जिसने 2011 में रॉबर्ट वाड्रा कांड को उजागर किया इकोनॉमिक टाइम्स में। तो अगर एजेंडा है बीजेपी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, तो पहले ये बताएं कि भाई वो स्टोरी कैसे छपा, वो स्टोरी इस रिपोर्टर ने कैसे किया।
ये जो मीडिया पर उनकी रिपोर्टिंग के लिए मानहानि का केस किसी राजनीतिक दल की ओर से किया गया, इस ट्रेंड को, इस प्रवृत्ति को आप कैसे, किस तरह देखते हैं?
हमारा मानना है कि ये ट्रेंड, ये प्रवृत्ति न सिर्फ वायर पे बल्कि सारे इंडियन मीडिया पे हमला है, क्योंकि आज एक सीधे साधे प्रेस रिपोर्ट पे 100 करोड़ मानहानि, नॉट ओनली सिविल डेफामेशन, क्रिमिनल डेफामेशन केस भी, और केस में कुछ ऐसे हमारे इदारे के लोगों के नाम जोड़ दिए गए जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस एडिटिंग और स्टोरी के एडिटिंग और लिखने के संदर्भ में। तो ये एक पूरी तरह से एक मीडिया को इंटिमिडेट और डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है कि हमला न सिर्फ हम पे है, पूरा इंडियन मीडिया पे है, और ये सब लोग अच्छी तरह समझ जाएं कि इरादे इनके यही हैं कि मीडिया में, टीवी में बीजेपी, बीजेपी के जो लीडर हैं, बीजेपी के जो अपने बिजनेस हैं, जो अलग अलग चीजें हैं, इस पे निगरानी और जांच ना पड़े, इसी चीज को इंश्योर करने के लिए इस किस्म की धमकियां दी जा रही है।
ये थे द वायर के संस्थापक संपादकों में से एक सिद्धार्थ वरदराजन। वक्त हो चला है अखबारों की समीक्षा का। दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहनलाल शर्मा। क्या कहते हैं आज के अखबार?
आदर्श, जो बड़ी खबरें हैं जिनका मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं, वो दो बड़ी खबरें हैं। एक तो गोधरा कांड का जो फैसला कल आया, उसमें किसी को फांसी नहीं, पहले उस खबर का जिक्र कर लेते। गुजरात हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया, और मेरे पास जितने भी अखबार हैं, दैनिक भास्कर है, अमर उजाला है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये अखबार इसी खबर को शीर्ष स्थान पर इन्होंने रखा है। और मामला आप सब जानते हैं कि गुजरात उच्च न्यायालय ने गोधरा ट्रेन नरसंहार मामले में जो उस समय हुआ था, उसमें 20 अन्य दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है, और जो 11 दोषियों की सजा है वो उम्र कैद में उसे तब्दील कर दिया। ये एक बड़ी खबर है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि दिल्ली और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है NCR, उसमें दिवाली पर पटाखे नहीं बिकेंगे, लेकिन पटाखे फोड़ने पर रोक नहीं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बिकेंगे नहीं तो फूटेंगे कैसे, ये इसमें थोड़ा सा विरोधाभास नजर आ रहा है।
आप ला सकते हैं।
तो कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली NCR में 31 अक्टूबर तक पटाखे बेचने के सभी लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिए हैं, और जस्टिस AK सीकरी का कहना है कि देखना चाहते हैं कि पटाखा बिक्री पर रोक से दिवाली के समय वायु प्रदूषण पर कितना असर पड़ता है, दिवाली के बाद एयर क्वालिटी रिपोर्ट देखने के बाद ही आगे की सुनवाई करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि दिवाली के बाद जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो मानक स्तर से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। एक और बहुत बड़ी खबर जिसका, जो कि दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि मेट्रो यहाँ की जीवन रेखा बन चुकी है, और मेट्रो में आज से जो किराया है वो काफ़ी महंगा हो गया है। इमरजेंसी बैठक हुई थी, अरविंद केजरीवाल इसका विरोध भी कर रहे थे, आज से अधिकतम किराया 50 की जगह 60 रुपए होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। जुलाई 1987 में भारतीय शांति सेना यानी कि IPKF एक समझौते के तहत उत्तरी श्रीलंका पहुंची थी। इरादा था LTTE से हथियार डलवाने का, मगर IPKF और LTTE के बीच युद्ध छिड़ गया। इस लड़ाई में IPKF के करीब 1200 जवानों की मौत हुई थी। उस दौर में IPKF के हिस्सा रहे रिटायर्ड मेजर जनरल शिवनान सिंह एक बार फिर जाफना पहुंचे। उनके साथ BBC संवाददाता विनीत खरे भी मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट सुनिए।
I never thought I'll come back here.
रिटायर्ड मेजर जनरल शिवनान सिंह ने नहीं सोचा था कि वो 30 साल बाद फिर जाफना लौटेंगे। आज यहां शांति है, लेकिन 1987 का जाफना अलग था। उत्तर में अलग ईलम देश की मांग करने वाले LTTE और श्रीलंका की सेना के बीच युद्ध चरम पर था। दक्षिण एशिया में सबसे लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध में LTTE श्रीलंका की सेना को कड़ी चुनौती दे रही थी। इस कारण पड़ोसी भारत में चिंता थी कि कहीं इसका असर उसके तमिल बहुल इलाकों में न हो। ऐसे में एक समझौते के तहत भारतीय शांति सेना या IPKF को श्रीलंका भेजा गया। शिवनान सिंह IPKF में मेजर के पद पर थे।
ये वो जगह है जहाँ सब कुछ शुरू हुआ। हम लोग 1987 जुलाई में जब यहाँ पर आए तो यहाँ पे आके उतरे। हमारा हवाई जहाज़, वो जो पायलन दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन का, उसके पास आके रुका। हम लोगों को कुछ पता नहीं था कि हम लोग किससे मिलने वाले हैं, हमको कौन मिलने वाला है या क्या होने वाला है। कोई ऐसा फॉर्मल कुछ भी ब्रीफिंग या कोई ऐसी बातचीत नहीं बताई गई।
पहला दिन आपका कैसे?
तो जब हम उतरे तो श्रीलंकन आर्मी और एयरफोर्स के जो लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने सोचा कि हम लोग जो हैं उनको पकड़ने के लिए और कैदी बनाने के लिए आए हैं, या हम उनके ऊपर फायर करेंगे। तो उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और हाथ खड़े करके हमारे पास, हमारे सामने आ गए। हम लोग अपने जहाज़ से उतरे, हमने उनसे हाथ मिलाया और उनके ऑफिसर्स को और सबको बताया कि हम लोग यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स के एलिमेंट्स हैं जो आए हैं, और हमारा आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं, हम लोग दोस्त हैं।
शुरुआत में स्थानीय तमिल जनता ने IPKF का स्वागत किया। N परमेश्वरन 1987 में विश्वविद्यालय के छात्र थे।
जब IPKF यहाँ पहुंची, सभी तमिलों ने सोचा कि IPKF उनकी रक्षा करने आई है। उनका स्वागत हुआ, लोग खुश थे, उन्हें लगा कि वो श्रीलंका की सेना से छुटकारा पा सकेंगे।
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सालों LTTE लड़ाकों को ट्रेनिंग दी थी, इसलिए शुरुआत में दोनों पक्षों के संबंध अच्छे थे।
बहुत अच्छे संबंध थे LTTE के साथ। LTTE को हमारे से कोई परेशानी नहीं थी। LTTE को अकॉर्ड के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, जो कि हमसे उनका कुछ मतलब उनसे हमारे साथ बहुत अच्छे तरह थे। वो हमारे पास आते थे, हम उनके यहाँ जाते थे, उनको उनको इनवाइट भी करते थे। अपनी बेस उन्होंने कभी नहीं दिखाई, लेकिन हमको मिलते थे वो कुछ डेजिग्नेटेड एरिया में, और हमारे जो पोस्ट थी उनमें वो आते थे। उसका एक्चुअली उनको फ़ायदा हुआ उन पोस्ट में आने का, क्योंकि उन पोस्ट के ऊपर वो पहले जब श्रीलंकन आर्मी थी तो अटैक करते थे। उनको बाहर से तो उन पोस्ट का पता था, अंदर क्या है ये पता नहीं था।
तो चीज़ें कहाँ से खराब होनी शुरू हुई?
चीज़ें खराब होनी शुरू हुई जब उन्होंने हथियार सरेंडर नहीं करे, और इंडियन आर्मी इस बात का IPKF प्रेशर महसूस करने लगा कि हथियार दे दें।
और जल्द ही IPKF और LTTE के बीच युद्ध छिड़ गया। IPKF ने अक्टूबर 1987 में LTTE के राजनीतिक गढ़ जाफना पर हमला बोल दिया।
इस जब हमने यहाँ पे इन घरों में पोजीशन ले ली, तो धीरे धीरे फिर 24 घंटे की लड़ाई चली। उस 24 घंटे में मेरे तकरीबन 6 आदमी मारे गए और 14 जो थे जख्मी हुए। आई सफर टोटल 20 फेटल नॉन फेटल कैजुअल्टी थी। तो इसके अंदर जब सबसे पहले आदमी जो मरने वाला था वो लक्ष्मी चंद था, जिसको मैंने बताया आपको रास्ते में गोली लगी थी। ही वॉज ब्रॉट हेयर, डॉक्टर वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम, और वो यहाँ पे मर गया। उसके बाद जब हमने आर्टिलरी फायर बुलाया, तो श्रीलंकन आर्मी फोर्स हमको हमारे फायर स्पोर्ट कर रही थी, तो दो गोले जो थे वो एक तो इस घर के ऊपर जिसमें मैं था यहाँ इसके ऊपर गिरा, एक ये सामने वाले घर में गिरा। तो उसमें उमेश पांडे जख्मी हुआ, जो कि तकरीबन आधे घंटे बाद वो मर गया। यहाँ पे गंगाराम था, गंगाराम के दोनों टांगें उड़ गई हैं और वो ब्लीडिंग से जो था गंगाराम मर गया।
श्रीलंका में IPKF पर बलात्कार, यातना देने और हत्या के संगीन आरोप लगे, जिसकी कभी कोई सरकारी जांच नहीं हुई। कई स्थानीय लोग 21 अक्टूबर 1987 को जाफना अस्पताल पर हुए हमले को याद करते हैं। आरोप है कि अस्पताल के भीतर से LTTE फायरिंग के जवाब में IPKF की फायरिंग में अस्पताल में करीब 60 लोग मारे गए थे, जिनमें डॉक्टर, नर्सिंग और मरीज शामिल थे। गोलीबारी के दिन ए देवेंद्रम अस्पताल में थे। वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो हमसे बात करने को तैयार हुए। वो कहते हैं कि उन्होंने IPKF जवानों को अस्पताल में आते देखा, जहां गोलीबारी के बाद शव बिखरे हुए थे।
वो सिख थे, उन्होंने पगड़ी और भारतीय सेना की वर्दी पहनी।
शिवनाम सिंह को लोगों की मौत का अफसोस है। भारतीय सैनिक अगले 29 महीने श्रीलंका में रहे। जब IPKF के जवान वापस लौटे, तो श्रीलंका के तमिलों में उनकी छवि धूमिल हो चुकी थी। माना जाता है कि साल 2009 में LTTE के खात्मे में भारत की भी भूमिका रही, लेकिन भारत ने हमेशा इससे इनकार किया है। शिवनान आज खुश हैं कि श्रीलंका में शांति है, लेकिन पूछते हैं कि 27 साल पहले दोनों तरफ हुए खून खराबे से आखिर क्या हासिल हुआ। विनीत खरे, BBC जाफना, श्रीलंका।
आप सुन रहे थे जाफना से BBC संवाददाता विनीत खरे की रिपोर्ट। झारखंड के लातेहार जिले के रहलदा गांव में धर्म बदलकर ईसाई बनने वाले आदिवासी इन दिनों परेशान हैं। धर्म बदलने वाले परिवारों का कहना है कि इस हिंदू बहुल गांव के डीलर उन्हें राशन देना बंद कर दिया है। उनका ये भी कहना है कि गांव वालों ने उन्हें धमकी दी है कि अगर वो फिर से हिंदू नहीं बने तो उनके सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे। सुनिए रहलदाग से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
रहलदाग के शिवा भुइया, नामिया उड़ाव, जसमनी कुंवर, रामसाहे उड़ाव, बबलू उड़ाव और सुगन भुइया समेत 13 आदिवासी परिवारों को 2 महीने से राशन नहीं मिला है। इन लोगों के पास राशन कार्ड है, जो इस बात का प्रमाण है कि वो जन वितरण प्रणाली के डीलर से अपने परिवार के लिए आवंटित राशन ले सकें। इसके बावजूद राशन वितरण के लिए अधिकृत स्वयं सहायता समूह ने इन्हें सितंबर महीने में राशन नहीं दिया, क्योंकि वे ईसाई हैं और इन लोगों ने दुर्गा पूजा में हिंदुओं को मुँहमांगा चंदा देने से इनकार कर दिया था। इन्हें अक्टूबर का राशन भी नहीं मिला है। शिवा भुइया ने BBC को बताया,
मैं लोग 551 रुपया मांग रहा था, हम बोले स्वेच्छा से हम 151 रुपया देंगे, उसके बाद बोला कि मैं 100 पाउंड रुपये नहीं लेंगे। उसके बाद चला गया। उसके बाद फिर उधर से लौट आया ना, बोला कि आपसे भी चंदा ले लेंगे, जो आपका अधिकार है, जो मतलब राशन मिलता है से आप लोग को नहीं दिया जाएगा।
करीब 125 घरों वाले रेहलदाग में ज्यादातर आबादी ठाकुर, सौंडिक, साव जैसी जातियों की है। कुछ घर उड़ाव और भुइयां आदिवासियों के भी हैं। रेहलदाग लातेहार प्रखंड की पिसरार पंचायत का हिस्सा है। ईसाई बन चुके लोग कुछ साल पहले तक हिंदू धर्म मानते थे, अब इन पर फिर से हिंदू बन जाने का दबाव डाला जा रहा है। वहीं जसमनी कुंवर कहती हैं कि उन्हें गांव छोड़कर चले जाने की धमकी दी गई है।
हाँ, वो लोग बोल रहा है कि छोड़िए, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं छोड़ेंगे, कैसे छोड़ देंगे हम? वो लोग बोला कि जाओ आगे बढ़ो।
मैं अब उसी वक्त से मुखातिब था जिन्हें राशन मारता है। विनय नाम के उस डीलर ने मुझे बताया कि उन्हें ईसाई बन चुके लोगों को राशन नहीं देने का लिखित आदेश मिला हुआ है। जब मैंने उनसे पूछा कि यह आदेश आखिर किसने दिया है, तो उनका जवाब था कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने ही उन्हें यह आदेश दिया है।
प्रोग्रामिंग लिखित दिया है स्वयं सहायता समूह कि आप इतने आदमी को सूचीबद्ध है, नाम दिया गया उसमें, कितने आदमी को जो है कि आप राशन नहीं देंगे, ठीक है, जब तक हम लोग इसका निर्णय नहीं ले सकते।
लातेहार की जिला आपूर्ति पदाधिकारी शैल प्रभा कुजूरी इस मामले को संगीन मानती हैं। उनका कहना है कि वे इस पूरे मामले की जांच कराएंगी और पीड़ित परिवारों को हर हाल में राशन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पिछले दिनों झारखंड की भाजपा सरकार ने विपक्ष के जोरदार विरोध के बावजूद विधानसभा में झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक पारित करा लिया। सरकार मानती है कि इस विधेयक के कारण धर्मांतरण रोकने में सहायता मिलेगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि ऐसे विधेयक समाज में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। रेहलदाग जैसी घटनाएं इसी का नतीजा हैं। रवि प्रकाश, BBC के लिए रेहलदाग, लातेहार में।
अब रुख करते हैं खेल समाचारों का। सोमवार को भारत फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप का दूसरा मैच कोलंबिया से हार गया। कोलंबिया ने भारत को 2-1 से हराया। खेल की दुनिया में और क्या हो रहा है, बता रही हैं सुमिरन प्रीत कौर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं सुमिरन प्रीत कौर। कल यानी 11 अक्टूबर से शुरू होगा 2017 का मेंस हॉकी एशिया कप। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देश हैं बांग्लादेश, चीन, भारत, जापान, मलेशिया, ओमन, पाकिस्तान और साउथ कोरिया। भारत पूल ए में है और 11 अक्टूबर को भारत का मुकाबला होगा जापान के साथ, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ। कैसा हो सकता है मुकाबला भारत और जापान के बीच, साथ ही क्या अहमियत है इस टूर्नामेंट की, बता रहे हैं पूर्व हॉकी प्लेयर और ओलंपियन अशोक कुमार।
बहुत अहम टूर्नामेंट है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए। हम ये भी है कि हमने 2007 में जीता था इसको, उसके बाद से जीत नहीं पाए हैं। जापान के साथ का मैच एक कांटेदार मैच समझने की कोशिश मैं करता हूँ कि एक अच्छा फाइट होगी हमारी, हम आसानी से नहीं जीतेंगे उसको, एक अच्छी फाइट हमको देखने को मिलेगी इसमें।
पूल ए में भारत के साथ हैं पाकिस्तान, जापान और बांग्लादेश। हॉकी से चलते हैं क्रिकेट की ओर। आज गुवाहाटी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा दूसरा T20 मैच। पहला T20 मैच हुआ था 7 अक्टूबर को रांची में, जिसे भारत ने 9 विकेट से जीता। आज होगा दूसरा T20 मैच और तीसरा T20 मैच होगा 13 अक्टूबर को हैदराबाद में।
और आखिर में विश्व समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन का कहना है कि तेज हवा के कारण आग को अब भी काबू में नहीं किया जा सका है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गूगल ने पता लगाया है कि रूसी एजेंटों ने पिछले साल अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में हजारों डॉलर विज्ञापन पर खर्च किए थे। वेनेजुएला ने चीनी लॉन्च सेंटर से अंतरिक्ष से एक दूसरा उपग्रह छोड़ा है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि इससे कृषि, पर्यावरण और आपराधिक गतिविधियों की निगरानी में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च अदालत में 7 सांसदों की दोहरी नागरिकता पर सुनवाई शुरू होने जा रही है। अदालत के इस फैसले पर उनका भविष्य टिका है। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का संपादन किया मोहनलाल शर्मा ने, स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने। शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।